ये आकाशवाणी है। सामयिकी में प्रस्तुत है लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के प्रचार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और पत्रकार नीलाभ श्रीवास्तव।
देश में आम चुनाव के 6 फेज कंप्लीट हो चुके हैं। 483 सीटों पर अब तक वोटिंग हो चुकी है। अब जो आखिरी फेज है, 7वां चरण है, उसमें 59 सीट्स 8 राज्यों में इन पे चुनाव होना है। ये आखिरी फेज है जनरल इलेक्शंस का। इस गर्मी के बावजूद कैंपेन बहुत ज्यादा हुआ, मगर ये 7वें फेज तक भी जाता हुआ लग रहा है एफर्ट में, और इस पूरे कार्यक्रम में कोई कमी नजर आती है और एंथुसियाज्म की कमी नहीं लग रही है।
बिल्कुल, हम लोग इलेक्शन मोड में अभी हैं, ये महसूस नहीं होता, लेकिन फैक्ट वही है कि इतने लंबे समय से 7 चरण में जो चुनाव हो रहा है, जिसको कहने के लिए अच्छा है फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन वास्तविक अगर देखें जितनी गर्मी है बाहर उतनी चुनावी गर्मी भी ज्यादा है। जो एग्रेसिव कैंपेन हो रही है, जिस तरह की भाषण दिए जा रहे हैं, इससे लग रहा है कि कंटेस्ट भी बड़ा टाइट है और कहीं ना कहीं वोटर को इम्प्रेस करने के लिए
कोई कसर नहीं छोड़ रहे।
और कई चीजें इसमें जुड़ गए, कई जगह पे स्थानीय कई मुद्दे हैं, कई कॉन्स्टिट्यूंसी के एक मुद्दे हैं, और हमारी जो लोकसभा चुनाव की जो एक प्रक्रिया जो रही है कि एक एक असेंबली चुनाव लगता है कि एक एक जगह में भी एक जनरल इलेक्शन क्या है, क्योंकि कैंडिडेट्स भी बहुत हैं। आप अगर एवरेज ले लेंगे एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम 10 कैंडिडेट्स हैं, तो एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए पहले तो सिटिंग एमपी को कितने को दोबारा टिकट देना नहीं देना, फिर नए चेहरे को लाना, फिर उसका असर क्या है। पार्टियां बहुत तैयार करती है, कोई भी पार्टी, वो रूलिंग पार्टी हो अपोजिशन पार्टी, बहुत तैयारी करके फिर लास्ट में ये कैंपेन होती है जहां पे सारे मुद्दे आते हैं। और इस चुनाव में हमने देखा कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी चीफ कैंपेनर हैं, 5 साल की कार्यकाल को लेकर लोगों के मध्य में गए हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि विपक्ष की अगर देखें सारी पार्टीज हैं, लेकिन खास करके कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी एक बड़े कॉन्फिडेंस से आगे बढ़े, खास करके जो विधानसभा चुनाव हाल ही में जो हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जिस तरह कांग्रेस के लिए जीत हुई, ये एक अपने आप में कांग्रेस के लिए एक बड़ा उत्साह दिया है, एक बल दिया है। आपने यूपी की जिक्र की, यूपी सबसे ज्यादा लोकसभा, वहां पे एक नया पॉलिटिकल चैलेंज आया है, वो है महागठबंधन, जिसमें दो पार्टियां हमेशा एक दूसरे से कभी मिलते नहीं थे, उन्होंने एक हाथ मिलाकर एक अलायंस कर लिया। और सवाल यही हो रहा है कि ये अलायंस बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। कांग्रेस भी अपने अकेली लड़ रही है यूपी में, ऐसे गठबंधन बिहार में भी है, बिहार में एनडीए एक अलायंस है और दूसरी तरफ आरजेडी के नेतृत्व में एक दूसरा अलायंस है, कई अपने बल में लड़ रहे हैं, कई सिटिंग एमपीज है। एक आप पूरा ये देखेंगे किसी के लिए ये चुनाव आसान नहीं रहा, कोई वो टिकट इजी कर सकते हैं या लाइटली ले सकते हैं।
हाई स्टेक्स बैटल है,
हाई स्टेक बैटल है, अगर कॉन्फिडेंस हो भी या ना भी, लेकिन लड़ाई जमीन पर पूरी ताकत से हर पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं।
हम सुनते आए हैं कि किसी भी संसद का रास्ता जाता है उत्तर प्रदेश से, इस बार पश्चिम बंगाल पे भी बड़ा स्ट्रेस है, 42 सीटें वहां से हैं लोकसभा की। जितना एफर्ट भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है अपने, चाहे स्टार कैंपेनर्स के सभाओं को लेकर हो, चाहे वो अमित शाह हो, बीजेपी प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री मोदी हो, उनके दूसरे भी कैंपेनर्स, इवन कांग्रेस ने भी उतनी एफर्ट लगाई, और वहां पे जो सिटिंग इनकम्बेंट एमपीज हैं वो टीएमसी के हैं, ममता बनर्जी जो पार्टी प्रेसिडेंट है वो उसको लीड कर रही हैं। मगर पश्चिम बंगाल के हर फेज में हम देख रहे हैं कि हर फेज में वहीं से वायलेंस की रिपोर्ट्स आ रही हैं। बाय एंड लार्ज बाकी स्टेट्स में तो वायलेंस की कोई घटना नहीं है किसी भी तरह की, मगर हर फेज में, और इसी कारण से अब तक के इतिहास की सबसे ज्यादा सेंट्रल फोर्सेस की भी डिप्लॉयमेंट भारत सरकार वहां कर रही है।
बिल्कुल, बंगाल अपने आप में मैं मानता हूं एक दुर्भाग्यपूर्ण चैप्टर है इस चुनाव में, क्योंकि हर फेज पे जैसे आप कह रहे थे हिंसा की घटनाएं कई हुई है, कभी कैंडिडेट्स को अटैक हो जाता है, कभी उनकी गाड़ी पर पथराव, कभी पोलिंग बूथ में भी झड़प, इस तरह की रिपोर्ट्स बार बार आया। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो वोटर्स हैं, जो आम जनता है, उनकी तरफ से यही मांग आ रही है कि केंद्र सरकार के पास और इलेक्शन कमीशन के पास आप ज्यादा से ज्यादा बूथ में आप पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय कीजिए, सेंट्रल फोर्सेस को, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, क्योंकि लोगों के अंदर एक भय का माहौल भी वहां पैदा हुआ है ये चुनाव की वजह से, कि वोट करेंगे तो उन पर आक्रमण होगा और बिना डर जाके वोट करना दिक्कत हो रहा है। कई गांवों में, शहरों में ये प्रॉब्लम नहीं है लेकिन गांवों में ये बात है। उसका एक कारण है कि जिस तरह हमने देखा वहां पे पंचायत चुनाव हुए पिछले साल, जिस चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पार्टीज आए, उसमें केवल बीजेपी नहीं था, कांग्रेस भी थी, लेफ्ट पार्टीज भी कंप्लेन कर रहे थे कि हमें यहां पे फ्रीडम नहीं मिल रहा है, कैंडिडेट्स को कैंपेन करने नहीं दे रहे, नॉमिनेशन तक नहीं भरने दिए, इसकी सुनवाई भी हुई, कलकत्ता हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने उस एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए 7 चरणों में बंगाल के चुनाव किए हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो तृणमूल कांग्रेस है, उनको लग रहा है कि पहली बार जब उन्होंने जीत के आए 2011 में, तो पूरा लेफ्ट पार्टी इसको कम्प्लीटली उनको समाप्त कर दिए थे। उसके बाद 2016 में उनको दोबारा मैंडेट मिला। अभी दोबारा मैंडेट मिलने के बाद वो देख रहे हैं कि जो विपक्ष की जो वहां पे एक स्पेस थी, उस स्पेस को बीजेपी ने पकड़ ली है और बीजेपी का वहां पे एक प्रकार से शुरुआत हुआ है, जो पंचायत चुनाव में भी रिफ्लेक्ट किया। और ममता बनर्जी को जिस तरह हिंसा को कंट्रोल करना था उन सरकार को, उन्होंने नहीं किया है। मैं मानता हूं कि यह अच्छी बात नहीं है बंगाल के लिए, क्योंकि देखिए चुनाव पार्टियां हारते हैं जीतते हैं, लेकिन जो हमारी डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट है उसको हमें मेंटेन करना है। क्योंकि आप जितना भी पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाइए, सब कुछ कीजिए, अगर पॉलिटिकल पार्टीज और उनके नेतृत्व इसको अगर स्वीकार ना करें कि लोगों को मौका देना चाहिए कि बिना कोई भय वो अपने वोट डाले हैं। सबसे आश्चर्य बात है कि ममता बनर्जी खुद इसकी विक्टिम अपने आप को मानती है। 96-97 में आपको याद होगा, ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ के तृणमूल की, क्योंकि उनको लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी वामपंथियों से लड़ेगी नहीं। और उस समय मुझे याद है ममता बनर्जी दिल्ली में आके प्रदर्शन करती थी उन लोगों को जिन पर अत्याचार हुआ था। ये सब करने के बाद जब वो खुद महसूस कर रहे थे कि इस तरह की राजनीतिक हिंसा न होनी चाहिए, आज उन्हीं पर भी ये आरोप आ रहा है कि भाई आप वही पॉलिटिकल वायलेंस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस वायलेंस को रोकना चाहिए।
जहां भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद और अपने 5 साल के काम को मुद्दा बनाया है, वहीं कांग्रेस के अपने मुद्दे हैं कि इन 5 सालों में वादा खिलाफी हुई है, भाजपा सरकार वो नहीं कर पाई जो उसने वादा किया था, और साथ में न्याय योजना है।
बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने जो न्याय जिसमें वो 72,000 हर साल कम से कम 25 करोड़ गरीब परिवार को देंगे करके एक नया चीज लेके आए हैं, लोगों के अंदर कितना रिएक्शन हुआ, कितना उसको लेकर कितना जलवा बना वो हमें मालूम नहीं है, जब तक परिणाम नहीं आएगा, लेकिन वो एक बड़ा मुद्दा है। साथ साथ में राहुल गांधी काफी समय रफाल जो डील हुआ था उस पर काफी फोकस किया, उसको लेकर कि क्या कांग्रेस उस पर बड़ी कैंपेन कर पाई, क्योंकि प्रधानमंत्री की छवि को लेकर जो सवाल किया गया था उस सवाल ज्यादा कांग्रेस अपनी कन्विंस नहीं कर पाई। और बीच में आपने देखा कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांगना पड़ा उसी कनेक्टेड मामले में, और प्रधानमंत्री इस बार चुनाव में जा रहे हैं, ये बड़ा स्पष्ट उनकी जो कैंपेन है, 5 साल को जो सरकार के हिसाब है उसको वोटर्स को डिसाइड करना है, क्या मोदी जी के लिए और एक सेकेंड टर्म देना है कि नहीं देना है, यही ब्रॉडली
इसी के इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा है।
देखिये इश्यूज अनेक है, बातें हर पार्टी रख रही है कई मुद्दे पर, लेकिन सवाल फिर वोटर के सामने यही है, क्या मोदी जी के लिए सेकेंड टर्म हम दे सकते नहीं दे सकते, अगर उनको देना है तो किस कारण के लिए देना है, अगर विपक्ष को मौका देना है तो किस कारण के देना है। बेसिकली डिबेट इसी पर रहा है और लोगों के सामने हर पार्टी अपनी बात रख रही है।
इन मुद्दों के अलावा एक और बड़ा इशू है जो इलेक्शन कमीशन और पॉलिटिकल पार्टीज का भी एक कंसर्न है कि वोटर टर्नआउट बहुत अच्छा हो। हम ऐसे समय में हैं जब पूरे भारतवर्ष में जो है लू और गर्म मौसम का प्रकोप है, ये भी एक चैलेंज है इंश्योर करना कि आप मैक्सिमम वोटर्स जब तक नहीं होंगे तो आपका एक रिप्रेजेंटेटिव या एक जो रियल टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी है वो शायद लागू नहीं हो पाएगा, इसको करने की भी प्रयास है और ये भी सातवें फेज तक जाएगा।
इलेक्शन कमीशन ने बहुत कोशिश किया है, कई कैंपेन्स उन्होंने किया है, वही है आपने कहा कि ये मौसम अपने आप एक तकलीफ सबको दे रहा है, जो चुनाव करा रहे हैं, जो चुनाव में मैदान में हैं और जो जाके वोट डाल रहे हैं, ऐसा मौसम की वजह से ही ज्यादा चैलेंज है। और ये जो प्रॉब्लम जो बात की, शहरों में ज्यादा ये है क्योंकि शहरों की संख्या कम है वोटिंग, लेकिन देहात में हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर उत्साह कम नहीं हुआ है
और अच्छे फिगर्स आ रहे हैं,
कतार में खड़े होकर वोट डाल रहे हैं।
हम उम्मीद करते हैं 19 मई को संडे को जो अब लास्ट फेज है पोलिंग का, उसमें बहुत अच्छी वोटिंग होगी और मई 23 को एक बहुत अच्छा डिसीजन जो सभी के अनुरूप होगा वो इस देश में हम रिसीव करेंगे। धन्यवाद।
धन्यवाद।
सामयिकी में अभी आप सुन रहे थे लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के प्रचार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और पत्रकार नीलाभ श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।